डॉक्टर डेविड ए डिसिल्वा, इब्रानियों सत्र 1b। इब्रानियों को पत्र का परिचय, धर्मोपदेश का कौन, क्या और क्यों, भाग दो। 2024 डेविड डिसिल्वा और टेड हिल्डेब्रांट। लेखक द्वारा छोड़े गए उपदेश की विषय वस्तु से हम उसके बारे में क्या जान सकते हैं, इस पर ध्यान देने के बाद यह भी उचित है कि हम इस पाठ को छानने में कुछ समय लगाएं कि यह उस मंडली के बारे में क्या बता सकता है जिसे वह संबोधित करता है। पत्र की शुरुआत न होने से हमें इस संबंध में बिल्कुल भी मदद नहीं मिली है। यह बहुत बढ़िया होता अगर इब्रानियों ने अमुक से अमुक स्थान तक की शुरुआत की होती, जिससे हमारे लिए ये अंतराल भर जाते। पूरे दस्तावेज में एकमात्र वास्तविक भौगोलिक संदर्भ अंत में दिए गए अभिवादन से आता है, इटली के लोग आपको नमस्कार करते हैं। और यह उस आपका पता लगाने के मामले में बहुत मददगार नहीं है जिसे इटली के लोग नमस्कार कर रहे हैं। दर्शकों के बारे में एक बहुत ही प्रारंभिक अनुमान यह है कि यह यहूदी ईसाइयों से बना था, शायद हिब्रू भाषी ईसाई भी। पांडुलिपि परंपरा में इस विशेष दस्तावेज को उस पांडुलिपि को बनाने वाले लेखकों या प्रतिलिपिकारों द्वारा दिए गए कई शीर्षक शामिल हैं, और ये वास्तविक श्रोताओं के रूप में इब्रानियों के कुछ समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ पांडुलिपियों में पढ़ते हैं कि रोम से लिखे गए इब्रानियों को इटली से लिखे गए इब्रानियों को, इटली से टिमोथी के माध्यम से लिखे गए इब्रानियों को, रोम से पॉल द्वारा यरूशलेम में रहने वालों को लिखे गए इब्रानियों को, इटली से टिमोथी के माध्यम से गुमनाम रूप से इब्रानियों को लिखा गया। इन सभी लिपिक शीर्षकों में जो बात आम है वह यह दावा है कि यह दस्तावेज ईसाई यहूदियों के उपभोग के लिए लिखा गया था। दर्शकों की इस पारंपरिक पहचान को बहुत अधिक समर्थन मिलना जारी है, लेकिन ऐसे कारणों से जो मुझे काफी हद तक भ्रामक लगते हैं। उदाहरण के लिए अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुराने नियम में लेखक की गहन रुचि गैर यहूदी दर्शकों की तुलना में यहूदी दर्शकों के लिए अधिक उपयुक्त है, या इस तर्क का एक रूप यह है कि पुराने नियम से परिचित होने की जिस हद तक लेखक अपने दर्शकों की ओर से मानता है वह गैर यहूदी दर्शकों के बजाय यहूदी दर्शकों के लिए तर्क देता है। इसके विपरीत पुराना नियम गैर यहूदी ईसाइयों के लिए उतना ही पवित्र वचन है जितना कि यहूदी ईसाइयों के लिए। गैर यहूदी ईसाई भी इन पवित्र ग्रंथों की व्याख्या में उतनी ही रुचि रखते होंगे जितनी यहूदी ईसाई रखते होंगे। गैर यहूदी ईसाई भी ईसाई उपासना के संदर्भ में पुराने नियम की व्यापक विषय वस्तु से जल्दी परिचित हो जाते और वर्षों के अंतराल में ईसाई शिक्षा सुनते। अगर हम दो अन्य नए नियम के ग्रंथों गलातियों और एक पत्रस को देखें तो हमें भी अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। ये दोनों ग्रंथ स्पष्ट रूप से गैर यहूदी ईसाइयों के लिए लिखे गए हैं। बेशक गलातियों का उद्देश्य ईसाइयों को खुद को खतना करवाने से रोकना है। यह तय है कि यह मुद्दा गैर यहूदियों के लिए है, यहूदियों के लिए नहीं, जिनके लिए यह निर्णय उनके जीवन के आठवें दिन लिया गया था। एक पत्रस उन मसीहियों को भी संबोधित करता है जो मूर्ति पूजा से दूर हो गए हैं, जिनके पड़ोसी अब उनसे अलग हो गए हैं क्योंकि वे ग्रीको रोमन धर्म में भाग लेना जारी नहीं रखते हैं जो वे पहले करते थे। इसलिए यहाँ हमारे पास दो पाठ हैं जो स्पष्ट रूप से गैर यहूदियों के लिए लिखे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में पुराने नियम से उद्धरणों का एक उच्च प्रतिशत एक उच्च सांद्रता है और साथ ही संदर्भ और संकेत भी हैं, जिन्हें यदि उनका पूरा प्रभाव होना है तो गैर यहूदी ईसाइयों द्वारा ईश्वर की भविष्यवाणियों के संदर्भ और संकेत के रूप में पहचाना जाना चाहिए। यह सब मुझे बताता है कि चर्च के शुरुआती दशकों में गैर यहूदी ईसाई मंडली में अपने यहूदी समकक्षों की तरह पुराने नियम की सामग्री में रुचि रखते थे और पूरी तरह से सामाजिक थे। यहूदी ईसाई दर्शकों के पक्ष में अक्सर जो तर्क दिया जाता है वह है लेखक का बलिदान पंथ और उसके कर्मियों पर ध्यान केंद्रित करना। कहने का तात्पर्य यह है कि लेवियों और इसराइल के पुरोहित वर्ग द्वारा मंदिर में या उससे पहले तंबू में किए जाने वाले कार्यों में उनकी रुचि है। यह तर्क दिया जाता है कि यह यहूदियों के लिए रुचिकर है, गैर यहूदियों के लिए नहीं। इसके विपरीत मैं कहूंगा कि इब्रानियों ने यहूदी और गैर यहूदी दोनों ईसाइयों के लिए पवित्र शास्त्र के रूप में पुराने नियम की मुख्य बाधा को सीधे तौर पर संबोधित किया है, अर्थात इन ग्रंथों को ईश्वरीय रहस्योद्धाटन और आधिकारिक मानदंड के रूप में कैसे धारण किया जाए बिना उनके द्वारा निर्धारित अनुष्ठान पंथ का पालन किए। कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने नियम को ईश्वर के वचन के रूप में पढ़ने वाले गैर यहूदी को यह सुनने की आवश्यकता होगी कि एक ईसाई के रूप में वह यरूशलेम मंदिर के किसी भी अनुष्ठान में भाग न लेते हुए इन ग्रंथों को कैसे धारण कर सकता है। यह पहली सदी के गैर यहूदी ईसाई के लिए पहली सदी के यहूदी ईसाई जितना ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। यह भी अक्सर सुझाया जाता है कि लेखक मुख्य रूप से यहूदी धर्म में वापसी को रोकने में रुचि रखता है, लेकिन हम वास्तव में केवल इतना जानते हैं कि लेखक भगोड़ों को रोकना चाहता है, न कि यह कि भगोड़े किस दिशा में जा रहे हैं। यदि वह केवल या मुख्य रूप से यहूदी ईसाइयों के गैर ईसाई यहूदी धर्म में वापस लौटने के बारे में सोच रहा था, तो यह आश्चर्यजनक है कि वह इसे जीवित परमेश्वर से दूर जाने के रूप में बोलता है, जैसा कि इब्रानियों 3:12 में है, न कि केवल मसीह से दूर जाने के रूप में। यह गैर यहूदी ही थे जिन्हें मूर्तियों से जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता थी, और यह गैर यहूदी ईसाई ही थे जो अपने पिछले जीवन में लौटकर जीवित परमेश्वर से दूर हो गए। स्वर्गदूतों मूसा और लेवी पंथ के साथ सूर्य की तुलना स्पष्ट रूप से ईसाइयों के सूर्य के साथ अपने रिश्ते में जो कुछ भी है उसके मूल्य को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह इतना स्पष्ट नहीं है कि ये तुलनाएं यहूदी धर्म को एक जीवंत विकल्प के रूप में कम आंकने के लिए हैं। धर्मोपदेश में कई सकारात्मक संकेत भी हैं कि गैर यहूदी ईसाई भी लेखक के श्रोताओं का हिस्सा थे। उदाहरण के लिए धर्म परिवर्तन के बाद श्रोताओं के प्राथमिक निर्देश के विषय यहूदी धर्मांतरित लोगों की तुलना में गैर यहूदी धर्मांतरित लोगों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। लेखक अध्याय 6:1-2 में लिखते हैं कि अपने नए विश्वास में समाजीकृत होने की प्रक्रिया में श्रोताओं को मृत कर्मों से पश्चाताप और ईश्वर के प्रति विश्वास, बपतिस्मा और हाथ रखने के बारे में निर्देश और मृतकों के पुनरुत्थान और शाश्वत न्याय के बारे में शिक्षा दी गई। अब दूसरे मंदिर काल के विशिष्ट यहूदी निश्चित रूप से पहले से ही ईश्वर के प्रति आस्था रखते होंगे और मृतकों के पुनरुत्थान और शाश्वत न्याय के बारे में जानते होंगे। ये यहूदी समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला में ब्रह्मांड के यहूदी निर्माण के बहुत ही सामान्य स्तंभ हैं, और यहाँ तक कि पारंपरिक यहूदी भी जो यहूदी धर्म के भीतर प्रसिद्ध दलों या स्कूलों में से किसी एक के साथ संरेखित नहीं हो सकते हैं, जैसे कि फरीसी या ऐसे। लेखक के लिए यह सोचना बहुत अजीब होगा कि मृत कर्मों से पश्चाताप और ईश्वर के प्रति आस्था यहूदियों के लिए उपयुक्त है। इसके बजाय यह संभवतः मूर्ति पूजा से गैर यहूदी धर्मांतरण का संकेत है। मूर्तियों को अक्सर मृत कार्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए सुलेमान की बुद्धि में शिल्पकार के बारे में बताया गया है कि वह मूर्ति बनाते समय अपने हाथों से मृत वस्तु पर काम करता है। और बेशक ईश्वर के प्रति आस्था थिस्सलुनीकियों को लिखे पौलुस के पहले पत्र जैसे पाठ में इसराइल के ईश्वर के प्रति गैर यहूदी धर्मांतरण के बारे में बात करने का एक तरीका है। पॉलिन मिशन की प्रकृति जिससे लेखक और इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि मंडली संबंधित थी, यह भी सुझाव देती है कि श्रोताओं के बीच गैर यहूदी ईसाई मौजूद होंगे। आखिरकार पौलुस खुद को गैर यहूदियों का प्रेरित मानता था, और भले ही उसने उपदेश देते समय अपने श्रोताओं में यहूदियों को भी शामिल किया हो, और भले ही वह ऐसी मंडली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध था जहां यहूदी ईसाई और गैर यहूदी ईसाई एक साथ भोजन कर सकें, उसने अपने काम को मुख्य रूप से राष्ट्रों तक पहुंचने के संदर्भ में पहचाना। इसलिए यदि लेखक पॉलिन मिशन से संबंधित था, तो तो ऐसा लगता है कि उसने उस चर्च को संबोधित किया जो उस मिशन से उत्पन्न हुआ था, और ऐसे चर्च में गैर यहूदी और यहूदी ईसाइयों की मिश्रित मंडली होगी। जब हम उस स्थान के बारे में सोचते हैं जहां यहूदी और गैर यहूदी धर्मांतरित लोगों की यह विशेष मिश्रित मंडली रहती थी, तो हम कुछ हद तक असमंजस में पड़ जाते हैं। भूगोल के बारे में फिर से एकमात्र सुराग 13:24 में दिया गया है, इटी से आए लोग आपको नमस्कार करते हैं। अब इसका अर्थ दो चीजों में से एक माना गया है, या तो यह पत्र इटली से लिखा गया है या यह पत्र इटली में लोगों को विदेश में रहने वाले उनके भाइयों और बहनों से वापस घर पर लिखा गया है। हालांकि सभी शुरुआती लिपिक अनुमान पहले विकल्प के साथ संरेखित होते हैं, शायद पहले पीटर और पहले क्लेमेंट के मॉडल के अनुसार दो अन्य पहली सदी के पत्र जो रोम से अन्यत्र ईसाइयों को लिखे गए थे। इटली से उन लोगों की अभिव्यक्ति ग्रीक में उत्पत्ति के बारे में बोलने का एक अच्छी तरह से प्रमाणित तरीका भी है, लेकिन किसी स्थान से अलग होने के बारे में बोलने का एक अच्छी तरह से प्रमाणित तरीका नहीं है। इसलिए सब कुछ इटली की ओर इशारा करता है। शायद रोम भी इटली में ईसाई धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में रचना के स्थान के रूप में। लेकिन यह कहने के बाद हमारे पास स्वागत के स्थान के बारे में कहने के लिए बहुत कम है, सिवाय इसके कि यह संभवतः पॉलिन मिशन के बेट में कहीं होगा। विद्वानों की शुरुआती ईसाई धर्म के सामाजिक विश्लेषण में रुचि बढ़ रही है। उदाहरण के लिए वेन मीक्स ने इस संबंध में कोरिंथियन चर्च पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन लिखा जिसका नाम था द फर्स्ट अर्बन क्रिश्चियन। इब्रानियों में लगभग उसी तरह का विश्लेषण नहीं किया गया है, लेकिन हम संबोधित करने वालों के सामाजिक स्तर के बारे में कुछ बातें कह सकते हैं। सबसे पहले धर्मोपदेश से पता चलता है कि श्रोता हर सामाजिक स्तर से आते हैं, न कि केवल परेशान लोगों या गरीबों से। इस समुदाय के कुछ सदस्यों के पास एक समय में जब्त करने लायक संपत्ति थी। मंडली में अभी भी ऐसे सदस्य थे जो आतिथ्य प्रदान करने और दान के कार्य करने में सक्षम थे, यहां तक कि इसके सबसे तीव्र उत्पीड़न के दौर के बाद भी। लेखक ने श्रोताओं को संपत्ति और संभवतः स्थिति को पुनः प्राप्त करने के संबंध में महत्वाकांक्षा के खिलाफ सावधान करना भी आवश्यक समझा, जो कि वंचितों की तुलना में संपन्न लोगों या कम से कम एक बार संपन्न लोगों के लिए अधिक संभावित मुद्दा है। हम श्रोताओं की कहानी के बारे में समुदाय के इतिहास के तीन प्रसंगों से कुछ जानते हैं जिन्हें उपदेशक याद करते हैं। वह इन विशेष प्रसंगों को रणनीतिक रूप से याद करता है। प्रत्येक प्रसंग उसके उपदेश में एक उद्देश्य पूरा करता है, श्रोताओं को उनकी वर्तमान चुनौतियों का उसी तरह से जवाब देने के लिए तैयार करना जैसा वह चाहता है। फिर भी वे समय के साथ इस समुदाय के जीवन में तीन खिड़कियां खोलने का काम भी करते हैं। इनका संबंध समुदाय की उत्पत्ति, नए धर्मांतरित लोगों के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले समाजीकरण और उनके इतिहास के कुछ शुरुआती समय में उनके पड़ोसियों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से है। पहला प्रकरण जिसे वह याद करते हैं वह समुदाय की उत्पत्ति से संबंधित है। अध्याय 2:1-4 में हम एक प्रश्न के रूप में पढ़ते हैं, हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे भागेंगे जो पहले प्रभु के माध्यम से बोला गया था और सुनने वालों द्वारा हमें पुष्टि की गई थी। परमेश्वर ने उनके साथ चिह्नों और चमत्कारों और शक्ति के विभिन्न कार्यों और पवित्र आत्मा के वितरण के साथ उनकी इच्छा के अनुसार गवाही दी थी। परिवर्तन के इस अनुभव में वचन सुनने के दौरान श्रोताओं ने दिव्य उपस्थिति और शक्ति का भी अनुभव किया। यह ईश्वर के साथ एक अनुभवात्मक मुठभेड़ थी जिसने उनके लिए सुसमाचार के संदेश की सच्चाई की पुष्टि की। यह पॉलिन चर्चों में एक आम पैटर्न है। यदि कोई एक कुरिंथियों अध्याय 2 या गलातियों अध्याय 3 की शुरुआती आयतों की तुलना इब्रानियों अध्याय 2 में इस विवरण से करे तो उसे काफी समानताएं मिलेंगी, खास तौर पर श्रोताओं को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर पर निर्भरता में। इस प्रकार समूह, इसकी सभाएं और इसकी आधारभूत विश्वदृष्टि और कहानी करिश्माई वैधता से जुड़ी हुई थी, जो लोगों को इस संदेश को प्राप्त करने और उस पर विश्वास करने के कारण दिव्य परम के साथ संपर्क में लाने से आई थी। यह अनुभव श्रोताओं को इस बात की अपनी पूर्व समझ से निर्णायक रूप से अलग होने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था कि ईश्वर कैसे काम करता है और उस तक कैसे पहुंचा जाता है। यह सच है चाहे वे पहले गैर ईसाई यहूदी या गैर ईसाई बुतपरस्त रहे हों। किसी भी तरह से संदेश के साथ और संदेश के माध्यम से ईश्वर के साथ उनके मुठभेड़ ने उन्हें ईश्वरत्व के साथ बातचीत करने के समय सम्मानित तरीकों से अलग होने के लिए आश्वस्त किया और इसलिए उन सामाजिक नेटवर्क से भी अलग होने के लिए जो ईश्वरत्व के साथ बातचीत करने के उन पैटर्न को बनाए रखते थे और बनाए रखते थे, चाहे वह चर्च से अलग आराधनालय में हो या ग्रीक और रोमन शहरों और पॉलीन मिशन के क्षेत्र में मंदिरों और नागरिक स्थानों में। समुदाय के इतिहास में दूसरा प्रकरण जिस पर लेखक हमें करीब से नजर डालता है वह है इस नए जीवन शैली में उनका समाजीकरण, दुनिया को देखने का यह नया तरीका जो सुसमाचार था। वे ईश्वर की भविष्यवाणियों में डूबे हुए थे, विशेष रूप से पुराने नियम के शास्त्रों के मसीह केंद्रित पठन में, और वे मसीह के बारे में बुनियादी शिक्षा में डूबे हुए थे, जैसा कि लेखक 6:01 में बताता है। यह ईश्वर के हस्तक्षेप की आधारभूत कहानी थी जिसके इर्द गिर्द ईसाई आंदोलन का गठन हुआ, मनुष्य यीशु मसीह में ईश्वर का हस्तक्षेप। लेखक इस नए विश्वास और जीवन के नए तरीके में उनके प्राथमिक धर्म शिक्षा के 6 घटकों के बारे में भी बात करता है। इनमें मृत कर्मों से पश्चाताप और ईश्वर में विश्वास, बपतिस्मा और हाथ रखने, मृतकों के पुनरुत्थान और शाश्वत न्याय के बारे में शिक्षाएं शामिल थीं। ईश्वर के प्रति विश्वास निश्चित रूप से गैर यहूदी लोगों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण के लिए मौलिक है। उदाहरण के लिए पॉल याद करते हैं कि कैसे थिस्सलुनीकियों के धर्मांतरित लोग 1:09 में जीवित और सच्चे ईश्वर की सेवा करने के लिए मूर्तियों से ईश्वर की ओर मुड़े। मृत कर्मों से पश्चाताप का विचार एक बार फिर मूर्ति पूजा को त्यागने की भाषा को याद दिलाता है, जो आम तौर पर ईश्वर के प्रति विश्वास में आने से जुड़ा होता है। सुलेमान की बुद्धि 15:17 में मूर्ति पूजक कारीगर द्वारा अपने अधर्मी हाथों से एक मृत वस्तु बनाने के बारे में बताया गया है, और लेखक अक्सर मूर्तियों को मृत वस्तुएं नेकरा कहता है। इसलिए यह बहुत संभव है कि इब्रानियों के लेखक के मन में यहाँ एक प्रारंभिक ईसाई शिक्षा है कि क्यों मूर्ति पूजा दैवीय शक्तियों के साथ बातचीत करने का तरीका नहीं है। यह भी संभव है कि मृत कार्यों से पश्चाताप का अर्थ उन कार्यों से पश्चाताप हो सकता है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, न कि उन कार्यों से जो जीवन की ओर ले जाते हैं। यह इस वाक्यांश की यहूदी पृष्ठभूमि के अनुरूप व्याख्या होगी, जैसा कि हम व्यवस्था विवरण 30:15-20 में पाते हैं। वहां मूसा अपने श्रोताओं को आदेश देता है कि वे परमेश्वर के नियम का पालन करके मृत्यु के बजाय जीवन को चुने, न कि ऐसे काम करें जो परमेश्वर के नियम के विपरीत हों। मृत कार्यों के बारे में एक विचार जो मुझे लगता है कि त्याग दिया जाना चाहिए वह यह है कि पुराने नियम के कानून का पालन करना या पुराने नियम के पंथ का अभ्यास करना मृत कार्य होगा, जिसके खिलाफ शुरुआती ईसाई आंदोलन ने प्रचार किया था। अब जहां तक इब्रानियों के प्रचारक का सवाल है, वे अप्रभावी कार्य हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मृत कार्य या मृत्यु प्रदायक कार्य नहीं है। यह पुराने नियम के कानून और यहां तक कि पुराने नियम के पंथ के बारे में इस लेखक के दृष्टिकोण की विकृति का प्रतिनिधित्व करेगा। लेखक यहां भी रणनीतिक रूप से ईसाई पूर्व जीवन को रंग दे रहा है। वह मसीह से अलग अपने जीवन के मृत कार्यों की तुलना उन महान कार्यों से करता है जो धर्मांतरित लोग अब मसीह के संबंध में करने में सक्षम हैं। अपने पत्र में 2 अन्य बिंदुओं पर इब्रानियों 10:24 और इब्रानियों 13:21 इस तरह के रणनीतिक रंग से ईसाइयों को अपनी वर्तमान पहचान को बनाए रखने में मदद मिलती है, बजाय इसके कि वे कम महान और निश्चित रूप से कम फलदायी पहचान की ओर लौटें। बपतिस्मा निश्चित रूप से ईसाई आंदोलन में प्रवेश का प्राथमिक और काफी सार्वभौमिक अधिकार है। यह एक ऐसे तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण है जो लोगों को एक पहचान और एक प्राथमिक सामाजिक समूह से दूसरे में संक्रमण करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि पॉल ने रोमियो में कहा था, बपतिस्मा पुराने जीवन को मरने और एक नए जीवन में जीवित होने के बारे में है। अनुष्ठान में त्याग का एक तत्व है, साथ ही खुद को एक नए जीवन और एक नए समुदाय से जोड़ना भी है। इब्रानियों के पाठ के बारे में जो बात हैरान करने वाली है वह यह है कि वह बपतिस्मा के बारे में बहुवचन में शिक्षा का उल्लेख करता है, और यह स्पष्ट रूप से अभी तक निश्चित नहीं है कि क्या लेखक किसी अन्य प्रारंभिक शिक्षा की ओर इशारा कर रहा था जो बपतिस्मा को मूर्ति पूजक या यहूदी शुद्धिकरण संस्कारों से अलग करती थी, या बपतिस्मा को शुद्धिकरण की किसी अन्य विशिष्ट प्रथा से जोड़ती थी जो अन्यथा प्रारंभिक चर्च में अज्ञात थी। या शायद लेखक यहाँ दोहरी सफाई के बारे में एक अलग तरीके से बात कर रहा था, जिसकी वह बाद में अध्याय 10 पद 22 में अधिक विस्तार से चर्चा करता है, जहाँ शरीर को साफ पानी से धोया जाता है, एक शारीरिक बपतिस्मा, लेकिन विवेक या हृदय को यीशु की मृत्यु द्वारा बुरे विवेक से धोया जाता है, जो बपतिस्मा का एक आध्यात्मिक प्रभाव है। एक और संभावना यह देखते हुए कि लेखक 6-4 में इस मार्ग के तुरंत बाद पवित्र आत्मा में एक हिस्सा प्राप्त करने की बात करता है, यह है कि लेखक पानी में बपतिस्मा को समुदाय में प्रवेश के रूप में और पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा के रूप में सोच रहा था। प्रेरितों के काम में हाथ रखना बहुत आम बात है, जो कि एक ऐसा पाठ भी है जो पॉलिन मिशन से जुड़ा हुआ है। यह धर्मांतरित व्यक्ति को पवित्र आत्मा की प्राप्ति में सहायता करने, धर्मांतरण से लेकर पूर्णता तक की यात्रा के लिए दैवीय रूप से सशक्त होने के संबंध में दिखाई देता है। उनके समाजीकरण के अंतिम दो तत्व मृतकों के पुनरुत्थान और शाश्वत न्याय से संबंधित थे, जो यहूदी विश्वदृष्टि और ईसाई विश्वदृष्टि दोनों के प्रमुख पहलू हैं। लेखक इस पर जोर देता है क्योंकि यह इस जीवन में कार्रवाई के तरीकों के फायदे और नुकसान को तौलने के आधार के रूप में महत्वपूर्ण है। यह इन सांसारिक परिणामों को सापेक्ष बनाता है और मृत्यु के बाद के परिणामों को अधिकतम करता है। इस प्रकार यह हमारी ईसाई मंडली को प्रोत्साहित करता है कि वे जो भी अल्पकालिक लागतें आवश्यक हैं उन्हें चुकाएं, ताकि मृत्यु के बाद की लागतों से बचा जा सके, जो कि बहुत लंबे समय तक चलेगी और बहुत अधिक होगी। यह सब एक साथ लिया जाए को पुनः समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्रक्रिया को दर्शाता है, जो इन प्रारंभिक ईसाइयों के लिए एक नई पहचान और एक नए जुड़ाव की भावना के निर्माण में शिक्षण और अनुष्ठान को जोड़ती है। इब्रानियों के अध्याय 10 श्लोक 32-34 में उपदेशक संबोधित करने वालों को एक प्रकरण में वापस ले जाता है, शायद वास्तव में एक विस्तारित अवधि अपने पड़ोसियों के साथ उनके संबंधों के संबंध में बहुत तनाव और शत्रुता की। अब उन शुरुआती दिनों को याद करें जब प्रबुद्ध होने के बाद आपने कष्टों की एक बड़ी प्रतियोगिता को सहन किया, कुछ हद तक निंदा और परीक्षणों का सामना किया, और कुछ हद तक खुद को उन लोगों के साथ भागीदार बनाया जो इस तरह से व्यवहार किए गए थे, क्योंकि तुमने उन लोगों के साथ सहानुभूति दिखाई जिन्हें कैद किया गया था, और तुमने अपनी संपत्ति जब्त होने को खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे पास बेहतर और स्थायी संपत्ति है। हम नहीं जानते कि इस उपदेश के समय ये पुराने दिन कितने समय पहले थे। हालांकि हमें एक स्पष्ट और मार्मिक तस्वीर मिलती है जिसमें ईसाई समूह का सम्मान इस यीशु के साथ खुद को पहचानने और उसके नाम पर भूमध्य सागर के शहरों में फैल रहे आंदोलन के परिणामस्वरूप खतरे में था। इन पुराने दिनों में उनके पड़ोसी उन्हें फटकार लगाते थे और किसी तरह के उत्पीड़न का सामना करते थे, जिसे किसी तरह का परीक्षण कहा जा सकता है। और लेखक उनके शर्म के अनुभव को उजागर करते हुए कहते हैं कि समुदाय को फटकार और उत्पीड़न के कारण यह एक तमाशा बन गया था। लेकिन वह यह भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने स्वेच्छा से उन बहनों और भाइयों की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाया जिन्हें उनके गैरीसाई पड़ोसियों द्वारा सबसे अधिक निशाना बनाया गया था, उन लोगों के लिए सहानुभूति दिखाते हुए जिन्हें उनके नए व्यवहार और उनकी नई निष्ठा के परिणामस्वरूप जेल में डाल दिया गया था। ऐसा करने में उन्होंने स्वेच्छा से जाने और खुद को इन लोगों का भागीदार होने के लिए सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए बहुत जोखिम उठाया, जिन्हें सबसे अधिक शर्मिंदा किया गया था, और वे खुद के खिलाफ इसी तरह की शर्म, उत्पीड़न और यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेंगे। लेखक संपत्ति की जब्ती के बारे में भी बात करता है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह जब्ती का कोई आधिकारिक कार्य था। उदाहरण के लिए किसी संबंधित आरोप पर विश्वासियों पर जुर्माना लगाना या केवल संपत्ति की लूट, जैसा कि प्राचीन दुनिया में अक्सर होता था यदि कोई समूह पक्षपाती था। यदि किसी समूह के पास शक्तिशाली संरक्षकों या कानूनी व्यवस्था की सुरक्षा का कोई सहारा नहीं था तो वे लूटपाट के लिए निष्पक्ष खेल थे। लेखक के उदाहरण का सार यह है कि अतीत में समुदाय इन सभी चीजों को धैर्य और यहाँ तक कि खुशी की भावना के साथ सहन करने में सक्षम था, यह जानते हुए कि उनका निवेश अब भगवान की नजर में बहुत मायने रखता है। अब ग्रीको-रोमन दुनिया में सम्मान एक मुख्य सामाजिक मूल्य था। सेनेका, पहली सदी के रोमन सीनेटर और दार्शनिक ने देखा कि जो सम्माननीय है उसे किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए प्रिय माना जाता है क्योंकि वह सम्माननीय है। इसलिए सम्मान या शर्मिंदगी समूह मूल्यों को मजबूत करने का प्राथमिक साधन है। यह मूल्यों की मूलभूत धुरी या मूल्यों की धुरी है जिस पर अन्य विचार बनाए जा सकते हैं। ईसाइयों के पड़ोसियों ने ईसाइयों को उनके पुराने जीवन के तरीके से हटकर इस नए और संदिग्ध निष्ठा में जाने के परिणामस्वरूप अपमानित, शर्मिंदा और कम मूल्यवान महसूस कराने की कोशिश की। ऐसा करने के पीछे इन पड़ोसियों की प्रेरणा उनके द्वारा किए जाने वाले विचलित व्यवहार को सही करना था। वे अपने उन पड़ोसियों को वापस पाना चाहते थे जो इस अजीब पूर्वी पंथ में शामिल हो गए थे और उन्हें वापस जीतना चाहते थे। या अगर वे यहूदी थे तो आराधनालय से दबाव उन्हें मूसा के कानून टोरा का अधिक बारीकी से पालन करने के लिए वापस जीतने के उद्देश्य से होगा, जिसमें पॉल और उनके मिशन द्वारा यहूदी ईसाइयों के समान गैर यहूदियों के साथ इतनी निकटता से नहीं जुड़ना शामिल हो सकता है। यह एक ऐसा साधन भी था जिसके द्वारा ईसाइयों के पड़ोसी आगे धर्मांतरण को हतोत्साहित कर सकते थे यदि वे यह दिखा सकें कि यदि वे इस समूह में शामिल होते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होगा। हो सकता है कि कुछ तत्व ऐसे हों जिनमें इन पड़ोसियों की प्रतिक्रिया उनके अपने विश्व दृष्टिकोण और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का प्रयास हो, जिसे वे अपने पड़ोसियों के इस अजीब पंथ में शामिल होने से खतरे में पाते। ऐसे कई कारण हैं कि एक गैर ईसाई बाहरी व्यक्ति ईसाई समूह में शामिल होने को एक असामाजिक और संभावित रूप से विध्वंसक कार्य मानता है, एक ऐसा विकल्प जो सुधार के योग्य है। जब गैर यहूदी अपने ही कुछ लोगों को ईसाई समूह में शामिल होते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह अधर्म, यहाँ तक कि नास्तिकता की ओर एक कदम है। एक थिस्सलुनीकियों में पौलुस ने मूर्तियों से हटकर जीवित परमेश्वर की सेवा करने के रूप में जो मनाया उसे अधिकांश गैर यहूदी इसराइल के लोगों के एक निश्चित रूप से जनजातीय परमेश्वर के प्रति निष्ठा के लिए अधिकांश देवताओं का अपमान मानते हैं। गैर यहूदी शायद ईसाई आंदोलन में शामिल होने को संभावित रूप से क्रांतिकारी या विध्वंसक भी मानते होंगे। आखिरकार अगर गैर यहूदी इस समूह के बारे में कुछ भी जानते थे तो वे जानते थे कि इसके नेता को रोमन गवर्नर द्वारा देशद्रोह के लिए सूली पर चढ़ाकर विधिवत मार दिया गया था। दूसरी ओर यहूदी इस ईसाई आंदोलन को एक ऐसे आंदोलन के रूप में देखते थे जो ईश्वर के पवित्र लोगों के चारों ओर की सीमाओं को नष्ट करने की धमकी देता था, क्योंकि यह पहले अच्छे सीमा पालन करने वाले यहूदियों को गैर यहूदियों के साथ खाने, उनके साथ संगति करने, शायद ईसाई पूजा के लिए एक स्थान के रूप में उनके घरों में प्रवेश करने और कई तरीकों से उन सीमाओं को खतरे में डालता था जो ईश्वर ने मूसा के कानून में ईश्वर के पवित्र लोगों के चारों ओर रखी थीं। वे यहूदी धर्मांतरित लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के अनुयायी के रूप में भी मानते थे जो सबसे अच्छा एक मसीहा होने का ढोंग करता है, सबसे बुरा एक ईशनिंदा करने वाला और शैतान के साथ गठबंधन करने वाला एक जादूगर है। संबोधित करने वालों की प्रतिक्रिया। ईसाइयों की अपने पड़ोसियों द्वारा शर्मिंदगी और सुधारात्मक दबावों का अनुभव करने की इस प्रारंभिक अवधि के प्रति प्रतिक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने अस्वीकृति को स्वीकार किया। उन्होंने उन पर शर्मिंदगी थोपने के प्रयासों को स्वीकार किया और उसे अनदेखा किया, इसके बजाय एक दूसरे के साथ संगति और उस मसीह के प्रति निरंतर वफादारी से चिपके रहे जिसे उन्होंने खोजा था, और उस ईश्वर के प्रति जिसने उन्हें अपने पंखों के नीचे ले लिया था, अपने पड़ोसियों की स्वीकृति से कहीं अधिक मूल्यवान है। यही कारण है कि लेखक उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस पिछले काल को उनके सामने रखता है कि वे अपना पूर्व साहस न छोड़े। शायद किसी प्राचीन पाठ के लेखक या उस प्राचीन पाठ के श्रोताओं के बारे में जानकारी से भी अधिक महत्वपूर्ण उस पाठ को प्राप्त करने के समय उन श्रोताओं की स्थिति के बारे में जानकारी है। इब्रानियों के बारे में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए उनमें से एक यह है कि इसका लेखक किन चुनौतियों का समाधान करता है। इस पाठ में ईसाई आंदोलन के प्रति किसी नए या उग्र विरोध का कोई सबूत नहीं है। वास्तव में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके पड़ोसी भी अपने ऊर्जावान शर्मनाक प्रयासों को जारी रख रहे हैं। उनकी ओर से एक शांत उपेक्षा ने उस समय के अपमानजनक और उत्पीड़न के उग्र कृत्यों की जगह ले ली होगी। यह इब्रानियों को एक पत्रस से अलग करता है, उदाहरण के लिए जहां लेखक बाहरी लोगों से वर्तमान और चल रहे दबाव की बात करता है। इस उपदेश को लिखने और भेजने के पीछे लेखक के लिए कोई महत्वपूर्ण कारण के रूप में सिद्धांत संबंधी विचलन का कोई सबूत नहीं है। इब्रानियों अध्याय 1 श्लोक 5 से 14 को समय समय पर इस बात के संकेत के रूप में लिया गया है कि संबोधित करने वाले स्वर्गदूतों की पूजा करने लगे हैं या स्वर्गदूतों के बारे में बहुत अधिक सोचने लगे हैं। यह लगभग निश्चित रूप से मामला नहीं है, बल्कि यह एक पाठ को अत्यधिक दर्पण में पढ़ने का एक बुरा उदाहरण है। यदि लेखक वास्तव में इस बात से चिंतित था कि संबोधित करने वाले स्वर्गदूतों या ऐसी किसी चीज की पूजा करना शुरू कर रहे हैं जैसा कि हमारे पास कुलुस्सियों में प्रमाण है, तो 1:05 से 14 के बाद जो उपदेश दिया गया वह वास्तव में उस चिंता को नहीं दर्शाता है जो यह दर्शाता है। ऐसा लगता है कि इब्रानियों का यह कदम मुख्य रूप से प्रतिबद्धता की विफलता के कारण हुआ है। विचलित ईसाइयों को शर्मिंदा करने के पहले के प्रयास अल्पावधि में विफल हो सकते हैं, लेकिन वे लंबे समय में गति प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं। श्रोताओं की स्थिति के बारे में हमारे पास जो एक ठोस सबूत है वह यह है कि उनके कुछ सदस्य, जरूरी नहीं कि बहुत से हों, लेकिन कुछ बड़े ईसाई समूह के साथ मिलने जुलने से खुद को दूर रखने लगे हैं। इब्रानियों 10:25 में लेखक कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसा कि कुछ लोगों की आदत है। अब वह अंतिम वाक्यांश हमें दिखाता है कि लेखक को स्पष्ट रूप से यह संदेश मिला है कि कुछ धर्मांतरित लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि ईसाई सभाओं में आना उस कीमत के लायक नहीं है जो इसके लिए चुकाई गई है। इन विश्वासियों ने अपने गैर ईसाई पड़ोसियों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को एक बार फिर से ढालने के खतरनाक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। वे अपने मूल शहर में एक बार फिर से घर जैसा महसूस करना चाहते हैं। इस स्वर्गीय शहर के प्रकट होने की लालसा से थक गए हैं जिसका वादा उनसे किया गया था। जैसा कि हम इब्रानियों को शुरू से अंत तक पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि श्रोताओं के सामने तत्काल खतरा प्रतिबद्धता की विफलता और उसके प्रभाव हैं, अर्थात ईसाई समूह को छोड़ना और ईसाई संदेश द्वारा उनके सामने रखे गए पुरस्कार पर अपना ध्यान केंद्रित करना छोड़ देना। इस प्रकार हम 2:1 में उनके धर्म परिवर्तन के समय सुने गए संदेश से दूर चले जाने के खतरे के बारे में पढ़ते हैं, या यीशु द्वारा बोले गए उद्धार के संदेश की उपेक्षा करने के खतरे के बारे में पढ़ते हैं, और न केवल यीशु के गवाहों द्वारा बल्कि अध्याय 2:3-4 में स्वयं परमेश्वर द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। हम 3:12-13 में अविश्वास के माध्यम से जीवित परमेश्वर से दूर हो जाने के खतरे के बारे में पढ़ते हैं, या अध्याय 4:1 में विश्राम के वादा किए गए स्थान में प्रवेश पाने में असफल होने के खतरे के बारे में पढ़ते हैं, या उसी तरह से असफल हो जाने के खतरे के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि 4:12 में विश्वास की विफलता के कारण जंगल की पीढ़ी अपने वादा किए गए देश में प्रवेश करने की दहलीज पर ही असफल हो गई थी, या फिर हम अध्याय 12:3 में थक जाने और हिम्मत हारने के खतरों के बारे में पढ़ते हैं, या फिर अध्याय 12:15 में परमेश्वर के उपहारों को प्राप्त करने में असफल होने के बारे में पढ़ते हैं। हम पूरे उपदेश में इसी मूल खतरे और इसलिए उसी मूल चुनौती पर बार बार जोर पाते हैं। समुदाय में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अपनी प्रतिबद्धता में लड़खड़ाते हैं और जो इस आश्वासन में लड़खड़ाते हैं कि उन्हें जो वचन मिला है वह विश्वसनीय है। उनके इस विश्वास में कि इस समूह में शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्होंने वास्तव में ईश्वरीय दर्शन प्राप्त किया है, और इस बात में कि उन्हें जो पुरस्कार दिए गए हैं वे वास्तविक हैं, और उस समूह के साथ जुड़े रहने के लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई है उसके लायक हैं जिसके लिए ऐसे पुरस्कार दिए गए थे। विश्वासियों ने दुनिया में बहुत लंबे समय तक सम्मान के बिना और ईश्वर के पुत्रों और पुत्रियों को दिए गए वादे के अनुसार महिमा प्राप्त किए बिना जीवन जिया है। वे बहुत लंबे समय तक प्रभु के दिन को देखे बिना रह गए हैं जो हमेशा करीब आता रहता है लेकिन कभी नहीं आता। उन्हें बीच के अंतराल में रहने की कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपने सांसारिक शहर में अपना स्थान और स्थिति छोड़ दी है, लेकिन वे अभी तक ईश्वर की नींव के स्थायी और स्थायी शहर में अपने सम्मान और स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस मंडली के कुछ सदस्यों ने समूह से अलग होने को पुनर्प्राप्ति के मार्ग के रूप में देखना शुरू कर दिया है, अपने पड़ोसियों के दिल में इस जीवन के बचे हुए हिस्से को पुनः प्राप्त करने का तरीका, जिन्होंने निस्संदेह पश्चाताप करने वालों और सुधार करने वालों का स्वागत किया होगा। यदि लेखक इस पाठ में एक काम पूरा करना चाहता है तो वह है श्रोताओं को इस प्रतिबद्धता में लड़खड़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, बल्कि उसी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखना जिस दिशा में वे पहली बार ईसाई आंदोलन में शामिल होने के बाद आगे बढ़े थे, और उसी आत्मविश्वासपूर्ण साहस के साथ ऐसा करना चाहिए जो उन्होंने पहले दिखाया था। वह अध्याय 3:6 में लिखता है कि हम मसीह के घर हैं यदि हम अपनी हिम्मत और आशा से आने वाले घमंड को थामे रहते हैं, या फिर 3:14 में हम मसीह के भागीदार हैं यदि हम अंत तक अपनी मूल प्रतिबद्धता को दृढ़ता से थामे रहते हैं। वह अध्याय 4:11 में अपने श्रोताओं को यह सलाह देना चाहता है कि हम उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए जल्दी करें, कहीं ऐसा न हो कि कोई जंगल की पीढ़ी की अवज्ञा के नमूने पर गिर जाए। वह उन्हें 14:16 में आग्रह करता है कि हम जो स्वीकार करते हैं उसे थामे रहें। आइए हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते रहें। अध्याय 6 श्लोक 11 में वह अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि तुम में से प्रत्येक को आशा के पूर्ण आश्वासन के लिए अंत तक समान उत्सुकता दिखानी चाहिए। और वह अध्याय 10 श्लोक 23 से 25 में उनसे आग्रह करता है, आइए हम आशा के अंगीकार को अडिग रूप से थामे रखने के लिए निरंतर निकट आते रहें। और आगे 10:35 पर अपने साहस को न छोड़े जो एक महान पुरस्कार रखता है, क्योंकि तुम्हें धीरज की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम वह पा सको जो वादा किया गया था। इसके और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, इसलिए इस उपदेश में एक के बाद एक उपदेशों में लेखक श्रोताओं को पहचान, प्रथाओं और सीमाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रखने की अपनी प्राथमिक इच्छा दिखाता है, जिसके कारण उन्हें समाज के साथ तनाव का अनुभव हुआ। उनके उपदेश में शुरू से अंत तक सब कुछ एक अलंकारिक प्रोत्साहन या एक अलंकारिक बाधा के रूप में समझा जा सकता है, जिसका उद्देश्य श्रोताओं की दृढ़ता, निष्ठा और परमेश्वर के पुत्र के प्रति कृतज्ञता को प्रेरित करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपने श्रोताओं के लिए उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रणनीतियां क्या हैं? जैसे जैसे हम इब्रानियों के पूरे पाठ पर काम करते हैं, हम पाएंगे कि लेखक दृढ़ता को प्रेरित करने के लिए तीन प्रमुख रणनीतियों पर ध्यान देता है, श्रोताओं से उनकी स्थिति के लिए तीन प्रतिक्रियाओं को अपनाने का आग्रह करता है। पहला है शर्म को तुच्छ समझना, दूसरा है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना जो उन्हें मिला है, तीसरा है एक दूसरे को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना क्योंकि वे अपने पड़ोसियों द्वारा उनके सामने लाई गई कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। श्रोताओं को शर्म से घृणा करने के लिए प्रेरित करने की यह पहली रणनीति उनके धर्म परिवर्तन और उनकी नई निष्ठाओं और नई प्रथाओं के प्रति ईसाई पड़ोसी की नकारात्मक प्रतिक्रिया की समस्या से सीधे निपटती है। ये पड़ोसी धर्मांतरित लोगों को उनकी पिछली गतिविधियों में वापस लाने के लिए शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे गतिविधियां जिन्हें वे पुष्टि कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गैर यहूदी पड़ोसियों की ओर से पारंपरिक देवताओं की पूजा में भागीदारी ने उनके दैनिक जीवन को संरक्षित और संरक्षित किया जैसा कि वे जानते थे, या गैर ईसाई यहूदी पड़ोसियों के मामले में उन सीमाओं पर ध्यान दिया जो परमेश्वर के पवित्र लोगों को संरक्षित करती हैं और उन्हें परमेश्वर के आदेश के पालन में राष्ट्रों से अलग करती हैं। लेखक श्रोताओं को शर्म को तुच्छ समझने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वे सामाजिक दबाव महसूस न करें, ताकि वे अपने पड़ोसी के सामाजिक नियंत्रण के प्रयासों से सुरक्षित रहें। इस रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक इब्रानियों 11 में पाया जाएगा, क्योंकि लेखक उन लोगों के प्रशंसनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है जिन्हें परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के सामने अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए खुद शर्म को तुच्छ समझना पड़ा। इस प्रकार विशेष रूप से अब्राहम, मूसा, शहीदों और स्वयं यीशु के मुकुट उदाहरण सभी उन लोगों के उदाहरण हैं जिन्हें विश्वास के द्वारा सांसारिक सोच वाले लोगों की राय को अलग रखना पड़ा, ताकि वे उस सम्मान का पीछा करने के लिए स्वतंत्र हो सकें जो परमेश्वर ने उनके सामने रखा था। और लेखक का समुदाय के अपने पिछले उदाहरण का स्मरण भी इसी श्रेणी में आता है। हम लेखक को शर्मिंदा या हाशिए पर रखे जाने के अनुभवों की पुनर्व्याख्या करते हुए भी पाएंगे जो वास्तव में ईश्वर के समक्ष सम्मान पैदा करने वाले अनुभव हैं। उदाहरण के लिए श्रोता की स्थिति को एक महान प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे यही बात है, जिसमें उन्हें प्रतिस्पर्धा करने और संभावित रूप से जीतने के लिए कहा जाता है, विशेष रूप से अपने पड़ोसियों के सामाजिक दबाव से ऊपर उठकर। यह उनके दिव्य पैडिया के रूपक के पीछे भी है, वह रचनात्मक अनुशासन जिसे ईश्वर ने उनके चारों ओर स्थापित किया है ताकि वे उस मातृभूमि के सम्माननीय और गुणी नागरिक बन सकें जिसे वे प्राप्त करने वाले हैं। लेखक की रणनीति का एक और प्रमुख घटक श्रोता की आंखों को उन सभी लाभों के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाने पर केंद्रित करना है जो उन्हें प्राप्त हुए हैं और जिन्हें प्राप्त करने की उन्हें अभी भी उम्मीद है। यह वास्तव में लेखक की बयानबाजी की रणनीति के केंद्र में है ताकि संबोधित करने वालों को उन अतुलनीय उपहारों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो उनके पास आए हैं और जो ईश्वर के अनुग्रह की यीशु की मध्यस्थता के माध्यम से उनके पास आएंगे। इस तरह लेखक यह भी उम्मीद करता है कि ईश्वर के पक्ष में उनके मध्यस्थ के रूप में यीशु के साथ जुड़े रहने का मूल्य उनके दिलों में स्थिर रहे। लेखक ऊर्जावान तरीके से उन लोगों को याद दिलाता है जो यह सोचने लगे हैं कि ईसाई समूह के साथ बने रहने से उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, कि इस संबंध के कारण उन्हें कितना कुछ मिला है और कितना लाभ होने वाला है। वह उनका ध्यान इस बात से हटाकर कि उन्होंने क्या त्याग किया है और उन्होंने क्या प्राप्त किया है, साथ ही साथ उनके कृतज्ञता के ऋण और उनके दिव्य उपकारक की ओर पुनर्निर्देशित करता है। इस तरह लेखक इस तरह से कार्य करने के अंतिम महत्व को बढ़ाता है जो ब्रह्मांड के ईश्वर के साथ इस परोपकारी लाभार्थी संबंध को हर दूसरे प्रोत्साहन या लक्ष्य से ऊपर रखता है। संरक्षण और पारस्परिकता सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया की आधारशिला थी जिसमें लेखक और उसके दर्शक रहते थे। किसी व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है उस तक पहुंच अनिवार्य रूप से समाज में किसी और के हाथों में ही होती थी। इस प्रकार कोई व्यक्ति वह प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए फसल कटने के बाद नई फसल बोने के लिए बीज या उन कुछ स्थानों पर कुछ अवसर तक पहुंच जहां इस दुनिया में ऊपर की ओर गतिशीलता संभव थी। ऐसा होने के लिए दूसरे व्यक्ति को अनुग्रह दिखाने के लिए तैयार होना चाहिए और ऐसा उपहार, अनुग्रह का ऐसा प्रदर्शन वास्तव में प्राप्तकर्ता और देने वाले के बीच अधिक संबंध स्थापित करता है। मैं यहाँ सार्वजनिक उपकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि एक बहुत अमीर नागरिक पूरे शहर के लिए दावत दे सकता है या खेलों के लिए पैसे दे सकता है, बल्कि व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत दिन प्रतिदिन की बातचीत की बात कर रहा हूँ। संरक्षण और पारस्परिकता ने लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक बंधन बनाए। हम इस रिश्ते की नैतिकता को शब्द चारिस के अर्थों में समाहित पाते हैं जिसका अक्सर अनुग्रह के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन इस ग्रीक शब्द केरिस के वास्तव में तीन अलग अलग लेकिन संबंधित अर्थ हैं। अनुग्रह देने की प्रवृत्ति, इसलिए इसका अनुवाद अनुग्रह है। उपहार स्वयं और देने वाले को दिया जाने वाला आभार। यह एक शब्द चारिस तीन अर्थों को एक साथ रखता है जो एक साथ पारस्परिकता का जाल बनाते हैं जो इस सामाजिक ताने बाने को एक साथ मजबूती से बांधे रखता है। एक शास्त्रीय छवि जो अक्सर भित्तिचित्रों, बेस रिलीफ और मूर्तियों में दिखाई देती है वह है तीन महिलाओं की छवि जो एक साथ एक घेरे में नृत्य करती हैं, अक्सर हाथ में हाथ डाले या एक हाथ दूसरे के कंधे पर रखकर। यह छवि तीन कृपाओं को प्रस्तुत करती है। सेनेका इस छवि के बारे में बोलते हुए पारस्परिकता के तीन पहलुओं के संदर्भ में महिलाओं, इन तीन कृपाओं या देवियों के बारे में बात करते हैं। एक कृपा अच्छी तरह से देने के लिए है, दूसरी कृपा अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए है और तीसरी कृपा अच्छी तरह से लौटाने का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि देने वाले के सम्मान को बढ़ाने के साधन के रूप में कृतज्ञता की प्रतिक्रिया देना, महंगे होने पर भी देने वाले के प्रति वफादारी दिखाना और सही समय आने पर किसी उपहार या सेवा को वापस करने के अवसरों की तलाश करना। यह सामाजिक सांस्कृतिक तर्क है जिसे लेखक और उसके श्रोता इब्रानियों की रचना और सुनने में लाते हैं। इस प्रकार जैसा कि लेखक उन लाभों पर ध्यान केंद्रित करता है जो मसीह में उनके प्रति ईश्वर के अनुग्रह के परिणाम स्वरूप अभिभाषकों को प्राप्त हुए हैं, वह ईश्वर और मसीह के प्रति उचित प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए नींव भी रख रहा है, मसीह और ईश्वर के घराने चर्च के प्रति निरंतर वफादारी को कृतज्ञता की प्रतिक्रिया से जोड़ता है जिसे उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा इस यीशु के साथ उनका निरंतर संबंध उन्हें ईश्वर तक पहुंच के निरंतर आनंद का आश्वासन देता है और पूर्णता का आनंद लेने के मार्ग पर दृढ़ रहने के लिए आवश्यक सभी संसाधनों को प्राप्त करता है, अंतिम लाभ जो ईश्वर ने उनके लिए अनंत क्षेत्र में वादा किया है। इस रणनीति के संबंध में हमें इब्रानियों के चेतावनी भरे अंशों को भी सुनना चाहिए, जिनमें से कुछ काफी प्रभावशाली हैं। लेकिन लेखक अपने श्रोताओं को केवल चेतावनी दे रहा है कि वे इतने उदार और इतने शक्तिशाली उपकारकर्ता को अपमानित न करें, सार्वजनिक रूप से उसका और उसके उपहारों का अपमान न करें, अपने पड़ोसियों को यह गवाही न दें कि अन्य मनुष्यों का अनुग्रह ईश्वर के अनुग्रह से अधिक मूल्यवान है जो उनके लिए ईश्वर के अपने पुत्र के लिए इतनी व्यक्तिगत कीमत पर जीता गया था। लेखक की रणनीति का तीसरा प्रमुख घटक जो इब्रानियों के पूरे ढांचे में चलता है, श्रोताओं को एक दूसरे को प्रोत्साहित करने और प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ता के लिए आवश्यक सामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है, विशेष रूप से एक असमर्थित समाज में। लेखक किसी भी ईसाई के विश्वास में दृढ़ता के लिए उसके साथी ईसाइयों के महत्व को पहचानता है, इसलिए वह शुरू से अंत तक विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को सकारात्मक दृढ़ता पोषण के तरीकों से सक्रिय करें। यह उनके गैर ईसाई पड़ोसियों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के क्षरणकारी प्रभावों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिपूरक और प्रतिसंतुलन प्रदान करेगा। लेखक प्रत्येक व्यक्ति की दृढ़ता के लिए उनकी सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। उदाहरण के लिए अध्याय 3 श्लोक 12 और उसके बाद के उपदेश में भाइयों और बहनों सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से किसी के मन में दुष्टता और अविश्वास हो जो जीवित परमेश्वर से दूर जाने की ओर प्रवृत्त हो, बल्कि हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहो जब तक कि आज का दिन है, ताकि तुम में से कोई भी पाप के छल से कठोर न हो जाए। या कुछ ही श्लोक बाद अध्याय 4 की शुरुआत में हमें डरना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का वादा रहते हुए तुम में से कोई भी रुक जाना बेहतर समझे। और फिर अपने उपदेश के समापन की ओर वह आग्रह करता है, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से कोई परमेश्वर के वरदान से वंचित रह जाए, कहीं ऐसा न हो कि कोई कड़वाहट की जड़ उगाए और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि कोई एसाव की तरह शारीरिक और ईश्वर विहीन बन जाए जिसने एक ही भोजन के लिए अपने जेठे होने के अधिकार को बेच दिया। जैसा कि हम अध्याय 5 में पढ़ते हैं, इस बिंदु तक श्रोताओं में से कई लोगों द्वारा शिक्षक बनने में विफलता के बारे में लेखक की शिकायत अधिक दृढ़ विश्वासियों की ओर से अपने बहनों और भाइयों की मदद करने में इस सक्रिय भूमिका को लेने में विफलता है जो कम प्रतिबद्ध हैं। कम पुष्टि की गई है कि वे ईसाई समूह के विश्वदृष्टि और प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखें, जो कि सबसे समझदारीपूर्ण और लाभकारी कार्य है। यदि समूह के सभी सदस्य डगमगाने वालों की दृढ़ता में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते तो अब कम लोग एक साथ इकट्ठा होने का त्याग करते। दूसरी ओर ये पीछे हटने वाले व्यक्ति अपने साथी ईसाइयों को भी निराश कर रहे हैं। उनका जाना समग्रता को कम करता है और पीछे रह गए लोगों की प्रतिबद्धता को नष्ट करता है, जो इस प्रकार सोचने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, यदि उन्हें अब यह ईसाई उद्यम आकर्षक नहीं लगता तो हम वास्तव में क्यों करते हैं। इस प्रकार लेखक शुरू से अंत तक शेष सदस्यों को एक दूसरे के करीब आने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए चिंतित करता है, उन्हें आश्वस्त करता है कि इसी गति का अर्थ है ईश्वर और उनकी स्वर्गीय विरासत के करीब आना। वह विश्वासियों को प्रेरित करने के लिए भी चिंतित है कि वे एक दूसरे के लिए जो कुछ भी उनमें से किसी को प्राप्त करने की आवश्यकता है उसे प्रदान करें, ताकि वे ईश्वर के प्रावधान और परिवार की वास्तविकता भाईचारे और बहन के प्यार को महसूस कर सकें और उस विश्वास के समुदाय के माध्यम से जिसके लिए उन्होंने खुद को प्रतिबद्ध किया है। हमने पिछले प्रस्तुति में यह समझने के लिए काफी समय दिया है कि लेखक मंडली जिस स्थिति में वे खुद को पाते हैं और उनके लिए लेखक के पादरी लक्ष्य और रणनीति के बारे में क्या जाना जा सकता है। एक अंतिम प्रश्न जो हम पूछ सकते हैं वह यह है कि इब्रानियों को कब लिखा गया था। दुर्भाग्य से, जैसा कि लेखक और संबोधित व्यक्तियों के स्थान के प्रश्न के साथ है, हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ठोस जानकारी नहीं है। आम तौर पर यह माना जाता है कि इब्रानियों की पुस्तक पहली सदी के अंत से पहले लिखी गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोम के प्रेरित पिताओं में से एक क्लेमेंट ने कोरिंथियन चर्चों को अपना पत्र लिखते समय इब्रानियों के पहले अध्याय का उल्लेख किया है। यह आमतौर पर ईसवी सन 96 के आसपास लिखा जाता है, इसलिए इब्रानियों को स्पष्ट रूप से पहले लिखा जाना चाहिए था। यह भी कहा गया है कि पॉल के मिशनरी साथियों में से एक तिमोथी अभी भी यात्रा के लिए पर्याप्त रूप से फिट रहा होगा, जो फिर से 96 ईस्वी से पहले के समय की ओर इशारा करता है। विद्वानों ने रचना की सीमा को और भी कम करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, विलियम लेन ने वर्ड बाइबल कमेंट्री सीरीज में इब्रानियों पर अपनी मैजिस्ट्रियल टिप्पणी में इब्रानियों को रोम में ही सेट किया है, जैसे कि वहां के ईसाइयों को संबोधित किया गया हो। वह इस कथन से यह समझ लेता है कि मंडली ने अभी तक खून बहाने की हद तक प्रतिरोध नहीं किया है कि यह पत्र नीरो द्वारा लगभग 64 ही में उस मंडली पर किए गए अत्याचार से पहले ही लिखा जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से, यह थीसिस रोम में इब्रानियों के पते खोजने पर निर्भर करती है, जबकि अधिकांश साक्ष्य उन्हें इटली के बाहर बताते हैं और लेखक वास्तव में खुद इटली में है या शायद रोम में भी है। दूसरों ने मंदिर में लेवी के बलिदानों के संदर्भों को एक संकेत के रूप में देखा था कि इब्रानियों को कम से कम 70 इसे पहले लिखा गया था जब मंदिर नष्ट हो गया था। मैं खुद इन तर्कों को प्रेरक पाता हूं क्योंकि लेखक ने मंदिर में बलिदान के बारे में जो कथन दिए हैं, वे स्वाभाविक रूप से मंदिर के विनाश और वहां बलिदानों के बंद होने से पहले बोले गए होंगे। उदाहरण के लिए, अध्याय 10 की शुरुआत में लेखक कहता है कि व्यवस्था कभी भी लगातार हर साल चढ़ाए जाने वाले समान बलिदानों के द्वारा उन लोगों को परिपूर्ण नहीं बना सकती जो उसके पास आते हैं। अन्यथा क्या उन्हें चढ़ाया जाना बंद नहीं हो जाता? उस कथन के अंत में आलंकारिक प्रश्न यह सुझाव देता है कि बलिदान वास्तव में अभी भी लैव्य व्यवस्था और उसके नियमों के अनुसार किए जा रहे हैं। अन्यथा इस अलंकारिक प्रश्न का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वास्तव में इस समय तक उन्हें चढ़ाया जाना बंद हो गया होगा। लेखक अध्याय 9 श्लोक 8 और 9 में यह भी कहता है कि सांसारिक निवास का पहला कक्ष पवित्र स्थान दूसरे कक्ष के विपरीत जो मंदिर में परम पवित्र स्थान के समान होगा, उद्धरण वर्तमान अवधि के लिए एक सादृश्य है जिसके अनुसार उपहार और बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं जो उपासक को उसके विवेक के संबंध में पूर्ण करने में असमर्थ हैं। फिर से, ऐसा कथन सबसे स्वाभाविक रूप से उस स्थिति में पढ़ा जाता है जिसमें लेखक और श्रोता जानते हैं कि ये बलिदान वास्तव में चढ़ाए जा रहे हैं। अंत में इब्रानियों 10 पद 11 में लेखक कहता है कि हर पुजारी दिन प्रतिदिन अपनी सेवा में खड़ा रहता है, बार बार वही बलिदान चढ़ाता है जो पापों को कभी नहीं मिटा सकता। ऐसा कथन फिर से सबसे स्वाभाविक रूप से लेवी के पुजारियों द्वारा उनके शास्त्रों में निर्धारित कर्तव्य के चल रहे समकालीन प्रदर्शन को दर्शाता है, जैसे कि इन बलिदानों में पापों की वार्षिक याद दिलाना जारी है। कुछ लोग इस दृष्टिकोण के खिलाफ तर्क देते हैं कि ये अंश 70 से पहले की तारीख की ओर इशारा करते हैं, इस दावे के आधार पर कि मिशनाह और पहली सदी के इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस इन लेवी के बलिदानों के बारे में बात करते हैं जो 70 ईस्वी के बाद भी चल रहे हैं या वर्तमान हैं। यह तर्क भी दिया जाता है कि लेखक 70 के बाद भी लिख सकता था और मंदिर के विनाश के बारे में बात करने में सिर्फ संवेदनशीलता दिखा रहा है। हालांकि इनमें से कोई भी तर्क मुझे विशेष रूप से आश्वस्त करने वाला या मददगार नहीं लगता। जहां तक मंदिर के विनाश के बारे में बात करने के लिए लेखक की संवेदनशीलता का सवाल है, मुझे लगता है कि लेखक यह उल्लेख करने में संकोच नहीं करता कि लेविटिकल बलिदान के ताबूत में अंतिम कील के रूप में मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। यह वही लेखक है जो यिर्मयाह 31:31-34 में नई वाचा से संबंधित अंश की अपनी व्याख्या में पुरानी वाचा के बारे में यह कहने में संकोच नहीं करता कि यह पुरानी हो रही है और समाप्त होने के करीब है। साथ ही जोसीफस और मिशना का यरूशलेम में होने वाले बलिदानों में विशेष निवेश है और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उन्हें बहाल मंदिर में फिर से शुरू किया जाएगा। यह संभवतः उन बलिदानों को स्मृति में रखने की व्याख्या करता है जैसा कि वर्तमान काल में उनके बारे में बात करते हुए चल रहा है या जारी है, निश्चित रूप से निर्णायक रूप से टूट नहीं गया है। हालांकि इब्रानियों के लेखक को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। वास्तव में वह उन बलिदानों को परमेश्वर के साथ किसी के रिश्ते के लिए अप्रभावी होने के स्तर पर रखता है और वह उन्हें यीशु की मृत्यु से पहले के समय में वापस ले जाता है। एकमात्र बलिदान जिसे वह वर्तमान क्षण में और सभी भविष्य के क्षणों के लिए महत्व देता है, वह बलिदान है जो यीशु ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपना जीवन देकर किया था। इस प्रकार जबकि प्रश्न निश्चित रूप से सुलझा नहीं है, मेरे लिए यह सोचना तर्कसंगत है कि इब्रानियों को दिया गया उपदेश 70 में यरूशलेम के विनाश से पहले भेजा गया संदेश था। उससे आगे हालांकि तिथि को और अधिक संकीर्ण करने के लिए बहुत कम कहा जा सकता है। हमने अब इस उपदेश के लेखक, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी कलात्मकता और कौशल, उसके उद्देश्यों और उसकी समग्र रणनीतियों के बारे में पूरी तरह से खोज की है। हमने ईसाई समुदाय या समुदायों की जनसांख्यिकी और इतिहास का भी यथासंभव पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण किया है जिन्हें वह संबोधित करते हैं और उन चुनौतियों का भी जो पादरी हस्तक्षेप का कारण बनती हैं, जिसे हम इब्रानियों के लिए पत्र कहते हैं। अब हम खंड दर खंड उपदेश का विस्तृत विश्लेषण शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसे हम न केवल पाठ की सामग्री के दृष्टिकोण से बल्कि इस बात के तरीके से भी करेंगे कि यह पाठ श्रोताओं को उस ओर कैसे ले जा रहा है जिसे उपदेशक उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति वफादार और लाभप्रद प्रतिक्रिया मानता है।